ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आज हम श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय 12 है, श्लोक संख्या 17 और 18। ओके। प्राणग्लह अयम समरह ईशु अक्षह। यत वाहन आसन अत्र न ज्ञायते अमुष्य जयः अमुष्य पराजयः। प्राणग्लोहं समर इस्वक्षो वाहनासनः अत्र न ज्ञायते अमुष्य जयो अजयमुष्य पराजय। प्राणग्लह प्राणों की बाजी, अयम यह समरह युद्ध, इशु अक्षह तीर रूपी आंख है, यहां कोई पांसे ऐसा शब्द। वाहन आसन हाथी तथा घोड़े जैसे वाहन चौसर है। अत्र यहां इस जुए के खेल में न नहीं ज्ञायते ज्ञात है अमुष्य उसकी एक की जय एक एक की जय विजय अमुष्य अमुक की पराजय हार। अनुवाद है, अरे मेरे शत्रु इस युद्ध को धृतक्रीड़ा के खेल मानो जिसमें हमारे प्राणों की बाजी लगी है। बाण पासे हैं और वाहक पशु चौसर है, कोई नहीं जानता कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, यह सब विधाता पर निर्भर है। श्री शुक उवाच इंद्रो वृत्र व्रच श्रुत्वा गतालीकम् अपूजयत् गृहीत ब्रजः प्राहसं तमाह विगतस्मि विस्मय। श्री शुकवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इंद्रः राजा इंद्र ने वृतवचः वृत्रासुर के वचन श्रुत्वा सुनकर गत अलिकम द्वैत भाव से रहित अपूजयत पूजा की ग्रहित वज्र वज्र धारण किए हुए प्रहसन हंसते हुए तम वृत्रासुर से आह कहा गत विस्मय आश्चर्य रहित होकर। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृत्रासुर के निष्कपट तथा निर्देशात्मक वचन सुनकर राजा इंद्र ने उसकी प्रशंसा की और अपने वज्र को पुनः हाथ में धारण कर लिया। इसके बाद बिना मोह या द्वैत भाव से वह हंसा और वृत्रासुर से इस प्रकार बोला, देवताओं में श्रेष्ठ राजा इंद्र को अपने शत्रु वृत्रासुर का, जो असुर माना जाता था, उपदेश सुनकर आश्चर्य हुआ। वह चकित था कि असुर होकर भी कितने ज्ञान की बातें कर रहा है। तब उसे प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे परम भक्तों की याद हो आई, जो असुरों के ही कुल में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई। कभी कभी तथा कथित असुरों में श्री भगवान के प्रति अति भक्ति भाव रहता है, इसलिए इंद्र विश्वास पूर्वक वृत्रासुर की बातों पर हंसा, यानी कि व्यंग में नहीं हंसा, आश्चर्य में हंसा। वाह, तो वाह बोलते ही मुस्कुराहट होती है ना। ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकाम्। वंदेहम श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। दप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृत्रासुर की बातें में अगला श्लोक कोई रूपक दे रहा है। अरे मेरे शत्रु, इस युद्ध को धृतकीड़ा के खेल मानो, जिसमें हमारे प्राणों की बाजी लगी है, बाण पासे हैं और वाहक पशु चौसर है। कोई नहीं जानता कि कौन हारेगा या कौन जीतेगा, यह सब विधाता पर निर्भर है। लड़ाई में तो ज्यादातर सब्र रस होता है, सब्र रस रजोगुण की देन है और सभी जीत के लिए ही लड़ रहे हैं, हार के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। यदि हारने के लिए कोई लड़ रहा है तो उसको पूर्व मालूम होना चाहिए कि अवश्य लड़ रहा है लेकिन वो मरने के लिए ही लड़ रहा है। तो आंतरिक उसके हृदय में जो व्यवस्था है आत्मा की, वो कोई भी निष्कपट भाव से स्थिर रही है। यानी कि आत्मा में वृत्रासुर भक्त हमेशा बना रहा, कभी भक्ति भुला नहीं। तो भक्ति की जो स्थिरता है वो स्थिरता क्षर और अक्षर दोनों की प्रकृति से परे है। भौतिक अवस्था में क्षर और अक्षर की समझ आती है, जो हमेशा तीन गुणों सत्व रज और तमो गुणों से ही हमेशा प्रभावित रहता है, तो गिरने वाला है ही, वो क्षर प्रकृति कहलाती है। लेकिन उससे ऊपर उठकर वह सत्व में स्थिर होकर परसत्व में यदि भक्ति करता रहता है तो उसकी अचल स्थिति आती है, उसे अक्षर स्थिति कहते हैं। लेकिन भगवान तो अक्षरादि चोत्तमम, अक्षर से भी ऊपर है, इसलिए वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। नहीं तो जो गिरने वाला पुरुष है वो तो झूठा पुरुष कहलाता है। जो स्थिर रहकर अपनी पुरुषत्व की भावना जो है, पुरुष यानी एंजॉयर, वो चाहे किसी भी शरीर में हो, ये तो तामसिक शरीर प्राप्त हुआ है वृत्रासुर को, और कितना प्रबल और प्रभावशाली है, जो सिर्फ नाश के लिए ही पैदा हुआ है। और ये देवताओं को भी उसने छेड़ा है और सबको भगा दिया है, और इंद्र के सामने उपस्थित है, और इसका भयानक रूप तो आज तक किसी न तो देवता या देवताओं के राजा इंद्र ने देखा था, वो तो देखकर ही थर थर कांपता था। तो उसमें जो भयानकता और विभत्सता जो है, वो भाव कितने भयानक है। तो जब देवताओं को भी त्रिगुणात्मक भाव में फंसा रहना होता है, और आत्मा की जो अचल स्थिति है, जो भगवान के विशुद्ध भक्त होने की, वो भी आवृत हो जाती है तीन गुणों के भाव से, तो कोई डर के मारे चले जाते हैं, कोई यहां वृत्रासुर कह रहा है कि ये तो दैव यानी कि विधाता पर निर्भर है, नहीं तो सारी जिंदगी एक जुआ जैसा ही है, खेल है, क्या हारेंगे क्या जीतेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारी स्थिरता नहीं है। स्थिरता तो आत्मा की होती है, आत्मा विशुद्ध भक्त होता है, वो उसकी वो मूल स्थिति ही है, उसके अनुसार हमें जीने की कोशिश करने के लिए ही तो ये भक्ति की का प्रयोग दिया है, कि विशुद्ध भक्त बनने के लिए हमें सारी चीजों को वैसे सहन करते करते स्वेच्छा से भगवान को स्वार्पण करना है। तो यहाँ वृत्रासुर तो पहले से ही भक्त है, चित्रकेतु का वृत्तांत आप जानते हो, वो बाद में आता है, लेकिन वो तो हिस्ट्री तो बाद में ही पता चलता है ना। तो लेकिन वृत्रासुर एक विशुद्ध भक्त है, असुर के शरीर में भी है, तो असुर के शरीर में तो प्रहलाद और बलि महाराज भी थे, लेकिन इन दोनों की भी स्थिति जो है, आंतरिक स्थिति वो कितनी प्रबल और स्थिरता वाली है। तो वृत्रासुर शरीर के प्रभाव को या शरीर की सारी क्रियाओं को एक एक जुआ की तरह समझता है, और इंद्र को समझाता है, तूने मेरा एक हाथ तो काट लिया है और तू जीत पर है, और तेरे लिए ही तो ये वज्र बना है, और वो वज्र के बारे में तू भूल गया था क्योंकि तेरी स्थिति जो है स्थिर नहीं है, तो मैं तुझे ये सूचना देता हूं, ये समझ देता हूं कि कैसे तू जीतने वाला है फिर भी क्यों डर रहा है मेरे से। तो ये पूर्व जो प्रकृति है, आत्मा तो कभी भूलेगा नहीं, गुण भाव हमें बुला देने वाले हैं। खासकर जो हमारे में यदि तमोगुण ज्यादा है तो भुलावा ही भुलावा होता है। अब कितना याद करोगे, लेकिन जो प्रकृति जिसमें बंधी है तो हमें तमोगुण हमें भुला देने वाला है। तो ये शरीर संबंधी और आत्म संबंधी जो विश्लेषण है, यानी कि उसका एनालिसिस है, तो वो वृत्रासुर उसे समझा रहा है, और वो भी विषम स्थितियों में। इसका मतलब है कि उसको अपना हाथ कटा है फिर भी कोई परवाह नहीं है, और उसे याद है जबकि इंद्र भूल गया था कि वज्र से ही मरेगा और इंद्र के हाथों से ही मरेगा। तो एक भक्त भगवान की इच्छा तो जानता ही है और उसके अनुसार वो अपना कर्तव्य परायण रहता है। एक असुर के शरीर में कर्तव्य परायणता कैसी होनी, मारना होता है, मार खाना होता है और मारना होता है, दोनों है। तो ये शरीर को उसको सहन किए बिना ही कोई छुटकारा है ही नहीं। तो इसी तरह ऐसे विषम स्थिति में भी वृत्रासुर की स्थिति इंद्र देखता है और तुरंत उसको ख्याल आ जाता है कि प्रहलाद महाराज और बलि महाराज जैसे असुरों के शरीर होते हुए भी इन लोगों की भक्त परायणता, भगवान के प्रति भक्ति जो है वो इतने ओतप्रोत रहते थे कि उस शरीर के साथ कोई इनको निस्बत ही नहीं थी। तो इसी तरह वृत्रासुर के शरीर में भी जब इंद्र देखता है तो उसे याद आ जाता है कि अरे सारा हार जीत का भी तो भगवान की इच्छा पर ही आधारित है और ये जानता है और मैं भूल जाता हूं। जब पुनः याद दिला सफल होता है तो इंद्र अपनी ही मूर्खता पर वो हंस रहा था। उसे हंसी क्यों आ गई कि अरे मैंने गलती कर दी। जो मरने के डर से कोई बच जाता है तो हमेशा हंसता है। अब जाओ रास्ते में कोई सामने से गाड़ी आ रही है या रिक्शा आ रही है और थोड़ा सा अंतर बढ़ गया तो आप छटक जाते, लेकिन हंसी आएगी अवश्य उस समय। अरे मरने की स्थिति आगे थी तो हंसे क्यों, लेकिन खुद की मूर्खता पर हंसते हैं हम। जबकि इंद्र जो हंसा है खुद की मूर्खता पर तो हंसता है, लेकिन ये विस्मय पूर्वक हंसा है, इसीलिए उसे कोई रंज नहीं होना चाहिए। जबकि वृत्रासुर जब चित्रकेतु था तब शिव जी के सामने वो भी ऐसी तरह ही हंसा था। देखो शंकरषण भगवान का प्रिय भक्त, उनसे चार कुमारों के साथ जब वैकुंठ लोक में वो गया था शिक्षा प्राप्त करके सारी पृथ्वी का राज भोगने के लिए उनको भेजा गया, तो राजभोग करना ऐश्वर्य रजोगुण का में हमेशा आच्छादित जीव है, फिर भी भगवान की भक्ति नहीं भूलता। पर लेकिन जब शिव जी के सामने आकर जो विचित्र परिस्थिति देखता है कि अरे शिव जी जैसे महान भक्त पार्वती को गोद में लेकर मुनियों के सामने भगवत चर्चा कर रहे हैं, कितना आश्चर्यजनक है। तो ऐसा विस्मय जो गुणात्मक भावना से देखे जाए तो हंसी खेल आती है, लेकिन अध्यापक में की भावना जो होती तो उसको याददाश्त जब आती है कि अरे भगवान से सीधा निस्बत है इस चीज को, तो अपनी गलती सुधार कर अपने पर ही विस्मय बताता है। तो पार्वती वो नहीं समझ पाई थी, लेकिन शिव जी समझ पाए थे। इसलिए शिव जी पार्वती को मना करते हैं कि भाई तो उसको श्राप मत दे, ये भक्त है, भक्त की ऐसी स्थिति होती है, वो बारंबार किसी न किसी प्रसंग में या कई घटनाएं यदि घटती है तो भगवान को ही निमित्त समझता है, चाहे समझने में थोड़ी देर लगे लेकिन वो कोई बाध नहीं है, बाधक नहीं। थोड़ी देर लगी तो क्या हुआ। तो अपनी कमजोरियों पर हमें हंसना चाहिए, विस्मय होना चाहिए। कभी कभी हम करते हैं, यदि कोई कहता है कि तो गलत है तो थोड़ी हंसी आ जाती है। कोई हमारी गलती बाहर निकाल कर कोई कोई बताता है, इट्स ओके प्रभु, वो भी थोड़ी स्मित लाती है, हंसी लाती है। तो ये विस्मय अज्ञानता का विस्मय नहीं है जो तमोगुण का है, ये आध्यात्मिक गुण में विस्मय आश्चर्यचकित होना, क्योंकि इंद्र भी जानता तो था का अंत तो गत्वा भगवान ही सब कुछ है, और ये मुझे बारंबार ऐसी विषम परिस्थिति में भी समझा रहा है, तो अवश्य ये कोई भक्त होगा, चाहे असुर के शरीर में भी क्यों ना हो। तो ये जानकारी और जो भाव इंद्र प्रकट करता है वो इंद्र अपनी लायकात बताता है कि अभी मैं भी भक्ति से ही काम करूं, उसको मारने में मुझे रंज नहीं है, लेकिन बाद में उसकी परिस्थिति बदलती है, देखना कि देवताओं के को सहाय करने के लिए इंद्र ने वृत्रासुर को मार, लेकिन जब भक्त को मारता है, भक्त की परिस्थिति को समझता है, तब अपने पर सारे पाप का बोझ उठा लेता है, उठाना पड़ता है। तो वहां भी विस्मय की स्थिति का परिणाम कितना गहरा उसको मिलता है। आप देखोगे कि ब्रह्म हत्या का उसको पाप नड़ता है कि एक भक्त को मारे, एक ब्राह्मण को मारा, वृत्रासुर ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को मारने का उसको पाप लगा, और पाप के पीछे वो घबराते घबराते भागता है और छुप जाता है सरोवर में, कमल की नाव में बना रहता है, कई सालों तक उसका आसन खाली है। बाद में जब ब्रह्मा जी तय करते हैं कि चलो पश्चाताप की अवधि खत्म हो गई, उसको बुला लो वापस। इस तरह भौतिक अवस्था में जो उसे कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस यानी ये स्थितियों परिणाम लाती है, तो भौतिक परिणाम लाती है, पाप और पुण्य दोनों भौतिक है। पुण्य से पवित्रता यदि आती है तो आत्मा की आनी चाहिए, अपने कर्मों की पवित्रता स्वर्ग तक पहुंचाएगी, लेकिन जब आत्मा पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होता है तो पूर्ण पवित्र होना चाहिए। तो यहां हम इंद्र की ये स्थिति है जो उसकी आंखें यानी कि ज्ञान की आंखें खुल जाती हैं और यहां एक शब्द प्रभुपाद जी ने उपयोग किया है कि असुरों में श्री भगवान के प्रति अतीव भक्ति भाव रहता है, इसलिए इंद्र विश्वास पूर्वक वृत्रासुर की बातों पर हंसा। यदि आपको उत्तर मिल जाए किसी के द्वारा तो आपको ये व्यक्ति पर उसके उत्तर द्वारा विश्वास होता है, तो विश्वास की मंजूरी हंसी में आती है। ये भी एक बात बताया, विश्वास मंजूर है हमें, हाँ ये सही है, तो उस पर आनंद आता है, तो आनंद में हंसी आती है। तो कभी कभी आश्चर्य होता है तो शुरुआत में, लेकिन आश्चर्य पर गौर करें तो उसको अपनी ही औकात याद आ जाती है, क्योंकि यदि मैं यदि भगवान का भक्त हूं मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। भक्त भक्त के बीच में आपस में तो कोई बैर होता ही नहीं, शरीर भेद और कर्तव्य के अनुसार ही बैर भाव बनता है। देवताओं और असुरों में यही बैर भाव पहले से ही बना है। तो यहां जो शब्द है गत अलिकम गतालिकम पूजयत शब्द का उपयोग किया है। जब बैर भाव खत्म होता है तो व्यक्ति समझ में आता है कि ये कोई महान है, तो पूजा के लायक है और मनोमन पूजा करता है उसकी, मनोमन पूजा करता है। पूजा के लिए ये आरती थाली लाने की आवश्यकता नहीं है, वहां मनोमन वो पूजय करना है। ऐसा नहीं समझा कि ओ इंद्र ने तुरंत थाली मंगवा ली पूजा करने लगा, ना ना ये जो पूजन आंतरिक भाव है। तो जो पूजा योग्य व्यक्ति है इनको तो मारना नहीं चाहिए। अर्जुन के सामने भी अपने वयोवृद्ध पितामह और गुरु दोनों पूजा के योग्य थे, तो पूजा के योग्य का वध नहीं करना चाहिए, वो अर्जुन भी कहता है। और यहां इंद्र के सामने भी ये जो पूजा योग्य असुर है इनका वध करो, तब अर्जुन ने जैसे समझदारी पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को समर्पित होकर अपना भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों का वध किया है, तो ये वध वध नहीं है। जो पूजन जो पूजा के योग्य है इनका वध कृष्ण भावना में वध नहीं कहलाता। हाँ युधिष्ठिर को ऐसा युद्ध के बाद एहसास होता था कि सारे पापों का कारण वो है, मुझे राजगादी पर बैठने के लिए अधिकारत्व दिया गया, मैं तो चाहता ही नहीं था, पर फिर भी जब हमें जबरदस्ती से अपने पूजा योग्य गुरुजन और भीष्म पितामह जैसे वरिष्ठ इनका इनके शरीर का नाश करना होता है, तो कौन सी हम आपत्तियों जो आएगी इनको स्वीकार कर सकते हैं क्या नहीं, उनका विचार कैसे कर पाएंगे, आता ही नहीं। लेकिन भगवान का निमित्त बनकर जो करता है उसे चाहे कोई भी परिस्थिति बाद में आए रिएक्शन के रूप में, रिएक्शन होता है जैसे इंद्र को हो रहा है, तो युधिष्ठिर इत्यादि समय अनुसार तुरंत रिटायर हो, कर्मों की जंजाल से छूटे और उन्होंने अपने अपने पुनः स्थान देवताओं के पुत्र के रूप में आए थे, वापस वही वहीं चले गए। इसीलिए स्वर्ग आरोहण कर बताया है, गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम में जाना और स्वर्ग आरोहण करने में भेद है। लेकिन ये तो सेवक थे, इंद्र का बेटा था तो इंद्र के पास ही जाएगा, इंद्र का तेज था और सूर्य का तेज, तो युधिष्ठिर धर्मराज का बेटा तो कर्ण वहां पहुंच गया, तो उस समय किसी भी प्रकार की भेदभावना या ईर्ष्या भी नहीं रहती, जहां ईर्ष्या नहीं है वहीं कृष्ण भावना होती है, ईर्ष्या के साथ कृष्ण भावना साथ में जाती ही नहीं। तो सारी चीजों का समाधान हमें यहां प्राप्त होता है कि बिना ईर्ष्या जो कुछ काम करना है करना चाहिए। ये तो लड़ाई के बाद भी ईर्ष्या साइड में रख देनी पड़ती थी, थक जाते थे शाम का, जैसे सूर्यास्त हो गया लड़ाई बंद और एक दूसरे के गले लगाते हैं और कहते हैं भैया तुमने आज काफी शौर्य बताया है, हमारे तो सैनिकों के छक्के छूट गए तेरे, और दुश्मनों से ऐसी बात करने की क्या आवश्यकता, लेकिन बैर भाव नहीं, उस समय बैर भाव नहीं होता। हम एक बांग्लादेश और ये जब मुक्त हुआ तब कोई मिलिट्री की बातें सुन रहे थे, तो उसमें भी जो ये युद्ध की प्रणाली में ये जब कोई शरणागत होता है तो उसे गारंटी दी जाती है भेदभाव नहीं तेरे साथ, दोनों पक्ष आकर संधि करते हैं वहां भेदभाव नहीं, तो ये काफी कुशलता की बातें होती है। उस समय बताते हैं कि एक अंग्रेज जो भारतीय सेना का वो उसने बांग्लादेश में उसके पास 5,000 भारतीय सैनिक थे और बांग्लादेश के पास 26,000 सैनिक था, फिर भी उन्होंने पता नहीं कैसे संधि का प्रस्ताव रख दिया, तो संधि शरणागति में हो गई, पलट मार दी, तो पाकिस्तान वाले शरणागत हो गए, अत्याचार तो किया था कैसे शरणागत हो गए वो आश्चर्य की बात है, नहीं तो कहां 5,000 सैनिक और कहां 26,000 सैनिक, भारत के तो 5,000 ही थे उस समय। तो तब ये प्रसंग भी हमें याद आया कि कल इस विषय पर ही बोलना है, तो जैसे सिविल कोड कहते हैं ना, सिविल कोड यानी सद्भावना या युद्ध है,
नागरिक संहिता, सिविल कोड मतलब नागरिक ये तो मिलिट्री है, हाँ ना, तो समथिंग सिविल, कुछ जो समाधान की ओर जाता है, तो समाधान वाले पहले विषम परिस्थिति में कोई अलग रूप से समाधान करना ही नहीं चाहता, जानबूझकर नहीं, उस टांग अड़ाता है, समाधान करना ही नहीं चाहता, तो वो लोग के साथ सिविल कोड उपयोग नहीं होता। सिविलाइज्ड यानी कि जो संस्कृति के अनुसार जो अपनी संस्कृति में जो चली आई जो प्रथा है और उच्च प्रकार के क्या कारण होते हैं जो हमें अपनी संस्कृति में से चले आए जो रीति रिवाज है, तो वो विपक्षों के लिए जरा ईमानदारी या मानपूर्वक उसको जाहिर करना होता है, चाहे दुश्मन है तो मर्यादा तो छोड़नी नहीं चाहिए जो हमने अपनी संस्कृति में से जो सीखा है, वो व्यवहार जो है ये व्यवहार आदर्शता बताता है। और आज भी थोड़ा हमें खास करके ये भारतीय राजकारण में थोड़ा दिखाई देता है, झलक दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ इतनी परेशानी क्यों, और जो ये सब कुछ छोड़ देते हैं वो लोग जानबूझकर क्यों परेशानी खड़ी करते हैं। अब तो पॉलिटिक्स में देशद्रोह भी अलाउड है, देशद्रोह भी अलाउड है, अब ये नया तरीका निकला है, तो इसमें इसमें आप अपनी आचार संहिता जो हमने अपने शास्त्र या अपनी संस्कृति में से पाई है वो क्या हमें छोड़ देनी चाहिए? नहीं, लेकिन ये भगवान की जब गहरी समझ होती है तो ये आचार संहिता काम में आती है और महानता का विषय बन जाती है। तो ये इंद्र भी अपनी महानता अब समझ रहा है, वृत्रासुर ने तो अपनी महानता बता दी कि भैया मैं राक्षस हूं फिर भी भगवान का भक्त हूं, और तेरे हाथ से मरने वाला हूं मैं वो जानता हूं, चल जल्दी कर, ये क्यों घबराता है? वृत्रासुर का हाथ कटा है फिर भी उसने इंद्र को ऐसा मारा कि उसके हाथ से वज्र भी छूट गया और वो भी गिर गया। तो जब हथियार चला जाता है और गिर जाता है वो तो हारा ही समझो, सही ना? पर नहीं नहीं, ये तो वृत्रासुर है, वृत्रासुर के तू हारा नहीं है, मैं ऐसा दिल में नहीं लाता, चलो उठ, हाथ में ले वज्र, मैं जानता हूं तू ही मुझे मारने मारेगा, ऐसा ये अमोघ शस्त्र है। तो वो सारी बातें भगवान की तरफदारी वाली हैं और उसको बीच में रखकर वो जब एक कटे हाथ से दर्द की तो कोई उसे परवाह ही नहीं है। प्रभुपाद जी अगले श्लोक में ही उसका उच्चारण करते हैं कि नहीं आगे आगे के श्लोक में शायद आएगा, यमल द्वाचा परम लाभ दो मन्यते ज्ञाधिकम ततः। बाद में या यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा भी विचार लेते, शायद ये कल आएगा। ये जो स्थिति है आत्मा की, उस पर समझ देते हैं कि जब एक विशुद्ध भक्त की अपनी स्थिति हमेशा अचल बनी रहती है, तो चाहे कोई भी बाहरी आघात प्रत्याघात या कुछ भी चलता हो, वो आंतरिक स्थिति हमेशा तादृश रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी आंतरिक स्थिति जब भगवान को समर्पित हो चुकी है, तो भगवान कैसे ऐसे लड़ाई के काम में भी ओझल हो जाएंगे, उसकी दृष्टि से बाहर नहीं निकल जाए। इसी तरह अर्जुन लड़ा है, क्योंकि यम लब्ध्वा चापरम ना मन्यते नाधिकम तथा, जो लाभ आत्मा की मूल स्थिति पर निश्चयात्मक भाव से जो ला चुका है, ऐसा लाभ जो उसमें मिलता है, उसे दूसरा और ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं, मानता ही नहीं। इसलिए वो स्थिति को दृढ़ता पूर्वक हमेशा विशुद्ध भक्त बचाए रखता है, कि शरीर होते हुए भी शरीर की जो कोई परेशानियां है, दुख और जो प्राप्त हुआ है, एक इतना बड़ा हाथ कट जाता है तो क्या क्या, हम तो धारणा भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा उसका स्वरूप है। तो इतना होते हुए भी गुरुणा नपि, यानी कि इतनी हद पर उसको अपने कंपैरिजन में तो वो तो बहुत कहलाता है। इतना दर्द होते हुए भी न विचालयत, कभी डरता नहीं। तो ये जो स्थिति है एक विशुद्ध भक्त की स्थिति होती, चाहे कैसे भी शरीर में क्यों ना हो। तो इंद्र की समझ में आता है कि ऐसी स्थिति में ये हमें उपदेश दे रहा है, उसे याद दिला रहा है, उसको याद है तभी तो याद दिला रहा है, तो उसकी स्थिति बहुत ऊंची है। इसीलिए मनोमन उसको पूजा करता है कि तू पूजनीय है, तू विशुद्ध भक्त है। मारना न मारना है तो साइड का बिजनेस है, मारे तो भी क्या न मारे तो भी क्या, लेकिन मारना है ये उसकी फर्ज है, क्योंकि वो देवता है, देवताओं की रक्षा करना इंद्र की जिम्मेदारी है। बाद में आत्मा के संबंध में तो वो तो स्थिर है ही, शरीर के संबंध में उसे विपरीत परिणाम भोगने पड़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जो लाभ उसने वो स्थिति में पा लिया है उसके लिए कोई नहीं। पर ये क्रिया प्रतिक्रिया वो तो चालू ही रहेगी, हम नहीं होते फिर भी चालू रहेगी, ये प्रकृति का नियम है। तो भक्त ही ये चुंगाल से छूट सकता है जब ये आत्मा की स्थिति जो भगवान में स्थिर रहने वाली जब आती है तब होता है। किसी को कोई प्रश्न है?
मेरी जिज्ञासा है, प्रश्न तो नहीं है, कि हमने गुरुपाद जी के द्वारा लिखित एक तात्पर्य पढ़ा कि भगवान के दर्शन पाने के कारण सीधे भगवत धाम गए। और यहाँ पर ये पांचों पांडव भगवत धाम न जाके स्वर्ग गए। तो ये उनकी अपनी चॉइस थी या बाय द विल ऑफ द प्रोविडेंस ऐसा हो?
ना, सेवा तो भगवान की थी और वही सेवा में फिर से जुड़ गए। बीच में आए, थोड़ा वेकेशन ले लिया था और भगवान के साथ सहयोग देने के लिए आ गए थे। भक्ति तो सनातन है, वो कार्य की प्रवृत्ति जो होती है जो उसमें जुटे रहना चाहिए। विष्णु पितामह भी वो वसु थे, इसीलिए तो भगवान की समझ मैं जानता हूं भगवान आपका ही मूल रूप है, लेकिन मैं तो आपकी सेवा चतुर्भुज में करता हूं, उसका क्या, आपका सेवक हूं। तो चतुर्भुज नारायण शिव रुद्र विष्णु खड़े होकर भगवान ने कह दिया कि देख वही तो मैं हूं, तू चाहता है तो बता दू। इसका मतलब क्या है कि भीष्म पितामह वसु थे, वो अपने वसु की पोजीशन पे पहुंच गए फिर से। अरे प्रमोशन ही तो भगवान की सेवा है, एक स्थल से दूसरे स्थल में जाना कोई प्रमोशन थोड़ा कहलाता है। आपकी चलो आपकी सेवा यहाँ है, कल आपको कहा कि जाओ दिल्ली मंदिर में जाओ तो आपका प्रमोशन हुआ? नहीं, आपकी स्थिति तो है। अरे एक विशुद्ध भक्ति की जो स्थिति है, विशुद्ध भक्त की जो स्थिति है वो सर्वोच्च क्यों बताए थे? तो वो स्थिति तो स्थल बदलने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें आदत है कि चलो यहां से काफी परेशानी थी, चलो अब दिल्ली में मजा करेंगे, इस तरह की भावना। वो बहुत ही खोजे वो प्रमोशन करो, नहीं भक्त की स्थिति कहीं भी है न गुरुणा न पिन विचालयत, है ना। भारी से भारे कोई कोई परेशानी भी क्यों ना आए, फिर भी भक्त अपनी जो आंतरिक स्थिति को कभी छोड़ता नहीं। और कोई या
इस प्रसंग से प्रश्न है, नॉट एग्जैक्टली आज की क्लास, बट इस प्रसंग से प्रश्न है। इसमें उसको बताया था जब रुद्रासुर युद्ध कर रहे थे और उसमें बताया जब रुद्रासुर इंद्रदेव को प्रोत्साहित करके कि युद्ध करो, तो उसमें बताया कि दो तरह की मृत्यु जो है वो पूजनीय है। तो एक तो ब्रह्म में ध्यान लगाना है, भगवान में ध्यान लगाना, और दूसरा जो युद्ध करते हुए जाता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मतलब धर्म युद्ध का पालन करें तो ठीक है, परंतु इसमें देखा जाए तो अगर लॉन्ग टाइम पिक्चर देखें तो ठीक है, रुद्रासुर भक्त थे और फिर भक्त थे, बट जो बीच का एपिसोड है इसमें एक्चुअली असुर थे, असली कार्य कर रहे थे, तो वो तो गर्व ही कार्य था मार भर। और इस मतलब इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट एक विशेष धर्म में भी लोग इसी बात को प्रोत्साहित करते हैं कि आप मार धार करो और आप तो स्वर की प्राप्ति हो, इन जनरल लैंग्वेज जैसे जैसे होते हैं, तो है तो असली कार्य
राजवी का धर्म है इंद्रिय भोग करना, पर उसे क्या है, वो तो शरीर अपने स्वभाव के अनुसार करता है, लेकिन आत्मा को यदि कोई छूता नहीं है, इतना एजुकेशन तो चित्रकेतु ने पा लिया था, इसलिए वो उसकी भक्ति की स्थिति को कभी छोड़ता नहीं। भक्ति की स्थिति को जो भौतिकवादी है तो वो तो कहते हैं कि देखो ये तो भक्त करके भी मजाक करने को मिलता है, चलो हम भी भक्ति करेंगे तो सकाम भक्ति हो गई। सकाम भक्ति में भी मौज मजाक तो करनी मिलती है ना, क्योंकि जो दृष्टिकोण हमें भगवान की ये पराभक्ति कहलाती है ना, तो ये पराभक्ति मैं कर्मों की कुशलता भगवान के साथ योग कराने में करते हैं हर एक प्रकार के, राइट। तो ये जो समझ है वो समझ हमें रामानंद राय में भी समझ में आता है। इनका जो सारा चरित्र बताया है, गृहस्थ थे फिर भी भगवान के ये रास लीला तत्व में रामानंद राय की हमेशा सलाह लेने वाले थे। प्रभुपाद जी कहते कि रामानंद राय तो मिनिस्टर थे और इनको नृत्य नाटक इत्यादि में काफी शौक था, तो लड़कियों को भी छूकर उसको अंग की भंगिमा कैसे होनी चाहिए क्या नहीं, तो ये सब समझाते थे। लेकिन इनका मन कभी दूषित नहीं था, तो चैतन्य महाप्रभु ने वो स्वीकारा। कोई कहता है कि ओ वो एक बड़ा सन्यासी ने एक राजा का मंत्री इनके साथ और जिसका चरित्र ऐसा है, नहीं उसकी आंतरिक स्थिति जब चैतन्य महाप्रभु जानते थे तो तभी तो उनको स्वीकारा। उसी तरह प्रताप रुद्र उसकी स्थिति पहले नहीं थी इसलिए चैतन्य महाप्रभु मना करते थे, लेकिन जब पूर्णता उसमें भी आ गई तब प्रताप रुद्र को भी चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकारा है, आलिंगन दिया है। तो इंद्रिय भोगी राजा अपने गुण अनुसार यदि कर्तव्य करता रहता है तो वर्णाश्रम धर्म उसको लागू है। वर्णाश्रम धर्म में भी भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है, इसलिए रामानंद राय वो सारी सीक्रेट जानते थे। अब रामानंद संवाद पढ़िए चैतन्य महाप्रभु के, नहीं नहीं ये तो नहीं, तो रामानंद के देखो ये देखो सर्वोच्च भक्ति इसी तरह निष्कलंक भक्ति यदि हो तो गोपियों की बताते हैं सर्वोच्च श्रेष्ठ, और उसके अनुसार ही हम सबको आज्ञा दी है क्रम्या काचित उपासना व्रज वधूर वर्ग जा कल्पिता, हमें उपासना करनी है तो इस तरह। तो भगवान के अंतरंग भक्त बनने में गोपियों के बाहर के ये लोग जो वर्णन कर रहे हैं विरह की वेदना, उससे और भगवान के साथ का तादात्म्यता का क्या निस्बत है, कुछ है? बिल्कुल नहीं। मैं समझ नहीं आता कोई और बाहर कोई आवाज आती है, मैं तो सोचता हूं मेरे सुनना भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो ये जो समझ है आंतरिक अवस्था की, वो जरा काफी आवश्यक है भक्तों को, नहीं तो बहुत प्रकार के भक्त भी बनेंगे। पर इसके लिए भगवान की भक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, गुणों में यदि इनका प्रवेश होता है, कंटामिनेशन होता है गुणों का, तो तब अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। विशुद्ध भक्ति में कोई गुणों का प्रवेश है ही नहीं। ऑलराइट, श्री प्रभुपाद की।